नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर बनाए हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन और व्यापार जारी रखने का आह्वान किया है।
पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
नई दिल्ली में श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीयों के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि इन हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान द्वारा दशकों से किए जा रहे शोषण, मौलिक अधिकारों के हनन तथा अवैध और जबरन कब्जे वाले क्षेत्रों में प्रशासनिक दमन का परिणाम है। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में मौसम और मिट्टी के अनुसार कृषि विकास की रूपरेखा तैयार की जा रही है। राज्य सचिवालय में आयोजित बैठक में उन्होंने कहा कि इसके लिए कृषि विश्वविद्यालय, शोध संस्थान और पश्चिम बंगाल सरकार मिलकर काम कर रहे हैं। श्री चौहान ने बताया कि पश्चिम बंगाल में चिंसुरा और मालदा सहित चार स्थानों पर आलू और जूट के बीजों के प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर वर्ष इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में देश की खाद्यान्न भंडारण व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक में प्रस्तावित भंडारण नीति और निजी उद्यमी गारंटी PEG योजना की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि बैठक में क्षेत्रवार भंडारण असंतुलन, अतिरिक्त खाद्यान्न के भंडारण, भंडारण क्षमता के बेहतर उपयोग और मौजूदा खरीद व्यवस्था के अनुरूप भंडारण मानकों में बदलाव जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने आज हैदराबाद के संतन नगर ESIC अस्पताल में 211 करोड़ रुपए की लागत से बने अत्याधुनिक बाह्य रोगी विभाग OPD ब्लॉक का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उनके साथ राज्य मंत्री जी विवेक वेंकट स्वामी भी मौजूद रहे। श्री मांडविया ने देश के विभिन्न हिस्सों में 650 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 6 अन्य ESI परियोजनाओं का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक प्रत्यक्ष कर के रूप में 7,73,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि एकत्र की है। वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में इसमें 16% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। इंग्लैंड ने भारत को बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 259 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 4 ओवर में बिना किसी नुकसान के 19 रन बना लिए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सस में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।